मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 24 मार्च 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हम लोग विद्या के बारे में बातें कर रहे थे। हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा संकट मुझे दिखाई देता है दोस्तों वो यह कि विद्या को हमने अपने केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तक सीमित कर दिया है। यानी कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने इस सब्जेक्ट में ये किया हुआ है, मैं मिडिल पास हूँ, मैं हायर सेकेंडरी पास हूँ। विद्या को हमने इस परिधि में कैद कर दिया है, जो इतना विशाल होता है उसे हमने बोनसाई में कन्वर्ट कर दिया है। अदरवाइज तो ये वटवृक्ष बहुत इसका घेरा है, इसकी जो जड़ें हैं हजारों लाखों जड़ें हैं और बकायदे पृथ्वी को वो स्पर्श करती हैं और एक बार जब वटवृक्ष तैयार हो जाता है तो हजारों साल तक वह टिका भी रहता है। और नतीजा इसका यह होता है कि इसको घेरे में डाल देने के कारण कि हमारा विस्तार रुक जाता है। विद्या का संबंध आपके सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन बेसिकली विद्या की नींव है, नींव है। क्योंकि अगर हम फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेंगे तो हम दूसरी चीजों को नहीं समझ सकेंगे। देखिए फॉर्मल एजुकेशन के तहत हम सब क्या पढ़ते हैं, हम उन चीजों को पढ़ते हैं, उन विषयों को पढ़ते हैं जिनका संबंध वैसे तो विषय के रूप में है लेकिन उनका संबंध हमारे या तो जीवन से है या हमारी जीवनगत परिस्थितियों से है। भूगोल में आप अपने प्रकृति को पढ़ रहे हैं तो हमारा जीवन है। इतिहास में आप क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास में हम अपने पूर्वजों की कथाएं पढ़ रहे हैं, उनके अनुभवों को जान रहे हैं कि अच्छा क्या था कैसे था, ताकि हम अपने अनुभवों को उसमें शामिल करके और बेहतर निर्णय ले सकें। इसलिए हम इतिहास पढ़ रहे हैं और अपने देश का भी इतिहास पढ़ते हैं और हम दुनिया का भी इतिहास पढ़ते हैं। राजनीति हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी राजव्यवस्था है, राजव्यवस्था का प्रभाव हमारे सीधे सीधे जीवन पर पड़ता है। शासन जैसी नीतियां बनाती हैं वो उन नीतियों का हमें पालन करना होता है और उन नीतियों से हमारा जीवन संचालित होता है, तो हम राजव्यवस्था पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था हमें पढ़ना ही चाहिए क्योंकि हमारी जीविका का आधार हमें प्रदान करता है, हमारे पास जो धन है उसको हम कैसे उसका इस्तेमाल करें, इन सब के बारे में हमें बताता है। तो आप देखिए कि ये विषय हैं लेकिन ये सिर्फ विषय नहीं है, जितने भी विषय हैं सारे के सारे विषय हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। और जब हम इन विषयों की नींव अपने यहां तैयार कर लेते हैं फिर वहां से विद्या की यात्रा शुरू होती है क्योंकि अब हमारे पास नींव तैयार है। अब हमारे पास जो इस न्यू में अनुभव डले हुए हैं इनके ऊपर अब हम अपने अनुभव की इमारत तैयार करते हैं। तो ये न्यू किसने बनाई, ये गुरु ने बनाई, ये गुरु ने बनाई। इमारत अब हम बनाएंगे और हो सकता है कि हमारी इमारत इतनी खूबसूरत हो कि दूसरे लोगों को लगे कि यार हमारी इमारत भी ऐसी होनी चाहिए, और जिनको ये लगेगा कि हमारी इमारत भी ऐसी होनी चाहिए वो आपको गुरु मान लेंगे। देखिए गुरु का मतलब ये नहीं कि कोई पढ़ा लिखा ही है, कोई गुरुजी है, कोई उसकी नौकरी कर रहा है। गुरु का सिंपल सा मतलब है ज्ञान देने वाला, सिंपल सा मतलब है और कुछ भी मतलब नहीं है। ज्ञान देने वाला या बिना दिए अगर आप किसी से ज्ञान ले लेते हैं तो वो आपका गुरु हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो ज्ञान दे ही बांटता रहे कि भैया आ जा मेरे पास ज्ञान ले ले कहीं बैठा हुआ है। आप भी ज्ञान ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, जानवरों से ले सकते हैं, चिड़िया से ले सकते हैं, अनपढ़ व्यक्ति से ले सकते हैं, घटना से ले सकते, किसी से भी ले सकते हैं। जिससे भी आपको ज्ञान मिल रहा है वह आपका गुरु है। एकलव्य की कथा क्या कहती है, एकलव्य ने किसको सोचिए कि मिट्टी की मूर्ति बना करके द्रोणाचार्य की, और उसने धनुष विद्या का इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो तो कुछ मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य जी तो कुछ गाइड कर नहीं रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उसने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो वहां आपको गुरु का एक बहुत अलग रूप दिखाई देता है। दत्तात्रेय जी की आप कभी कथा पढ़िए, दत्तात्रेय कहते मेरे 24 गुरु थे, और उनसे पूछे कि भैया आपके कौन से 24 गुरु थे, तो बड़े विचित्र विचित्र वो नाम बताएंगे। बोले कि हाथी मेरा गुरु था, मधुमक्खी मेरी गुरु थी। बताइए ये कोई गुरु हुए, हाँ वो कहते हैं कि मेरे गुरु थे क्योंकि मैंने इनसे सीखा। तो यहां मित्रों एक बात और हमारे सामने आती है, वो ये कि ये जो गुरु है ये ज्ञान देता है और शिष्य ज्ञान लेता है। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है कि शिष्य का भी तो कुछ दायित्व है कि वो किन किन से ज्ञान ले रहा है, बहुत बड़ा दायित्व है। और जिनसे भी आप ज्ञान लेते हैं वो आपके गुरु बन जाते हैं। तो विद्या का जो विस्तार होता है वो अनुभव के आधार पर होता है, और हम चारों तरफ अपने जीवन के हर पल में कुछ ना कुछ अनुभव ले रहे होते हैं और वे हर पल हमारे गुरु होते हैं। अब आप देखिए कि वो आगे क्या कहते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, ये मुझे दे दो, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि। फिर आगे की जो लाइन है इसके बारे में लोग थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं, ज्यादातर जो मेरी बात हुई है और मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता हूं। लोग क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं कि मुझे ये सब दे दो, बल दे दो, बुद्धि दे दो, विद्या दे दो, और मेरे जितने भी क्लेश हैं, मेरे जितने भी दुख हैं, तकलीफ हैं, इन सब का हरण कर दो। वो ये कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार, मतलब मेरे अंदर जो भी विकार हैं, शरीर के विकार हैं, मानसिक विकार हैं, जो क्लेश हैं, उन सब का तुम हरण कर लो, खत्म हो जाए बात। मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूं। अब पता नहीं आप मुझसे सहमत हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो आपके ऊपर है। आप अगर सहमत हैं तो आप मुझे बताइए, असहमत हैं तब तो जरूर बताइए, ताकि मैं अपने आपके अपने विचारों पर फिर से विचार कर सकूं। मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि हे हनुमान जी, हे प्रकृति, मैं अपने से ही बात कर रहा हूं, कि मुझे ये तीन चीजें दे दे, बल दे दे, बस शरीर रूप से स्वस्थ रहूं, बुद्धि दे दे, मेरी बुद्धि ठीक ठाक रहे, फिरे नहीं। आप देखिए कि क्या कही कि बुद्धि कैसे थोड़ी सी फिर गई और उतने में क्या से क्या हो गया। और विद्या दे दे, मतलब कि मेरे पास अनुभव का अच्छा भंडार हो, मैं सही निर्णय लेने की स्थिति में हूं, मेरे पास दुनियादारी की जानकारी हो, ये दे दे। और इसके बाद अगर तू ये दे देगा तो बाकी काम मैं खुद कर लूंगा, मुझे ये दे दे, और ये दे कर मेरे विकारों का, मेरे क्लेशों का हरण कर। अब आप देखिए कि क्या कह रहे हैं, ये दे दे और हरण कर, वो नहीं कह रहे हैं। यहां जो मेरा अर्थ है वो है कि तू ये सब मुझे दे दे, और यदि तूने ये सब हथियार मुझे दे दिए तो बाकी काम तो मैं खुद ही कर लूंगा, फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं खुद ही अपने क्लेश दूर कर लूंगा। दोस्तों, क्या ऐसा नहीं है? हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास ज्ञान है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र के ज्ञान की बात कर लीजिए, आपके पास बिजनेस का ज्ञान है, आपने MBA किया हुआ है, आपने MD किया हुआ है, आपके पास डॉक्टरी का नॉलेज है, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कुछ भी हैं, आप एडवोकेट हैं, आप टीचर हैं, आप किसान हैं, आप मजदूर हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसका ज्ञान आपको है, उसका इस्तेमाल कीजिए ना। और जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो सीधी सी बात है कि जो आपके विकार हैं, जो आपके क्लेश हैं, चाहे वो मानसिक क्लेश हो या शारीरिक क्लेश हो, अपने आप दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो रहेंगे ही नहीं। हम इन सब के शिकार हैं ही सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इनका समुचित तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका समुचित रूप से जो इस्तेमाल करने की हमें क्षमता पैदा करता है वह है हमारा गुरु, और इसीलिए कहा गया श्री गुरु चरण, मैं तुम्हारे चरण की धूल को अपने माथे पर रखता हूं। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, फिर इस पर आगे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।